नमस्कार श्रोताओ, सत्य वचन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। श्रोताओ, जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम नए नियम में से रोमियो नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको काफी जानकारी प्राप्त हो रही है। इस पुस्तक के लेखक हैं संत पौलुस। श्रोताओ, इस पुस्तक के अंतर्गत विशेष रूप से विश्वास, आदर्श मसीह जीवन और मसीह कर्तव्य पर जोर दिया गया है, साथ ही छुटकारा यानी कि हमें पापों से किस प्रकार मुक्ति प्राप्त हो सकती है इस विषय में बताया गया है। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले। सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, सच बतला दे तेरे मन में रात ये कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले, ख्वाबों में जो खोया है जा जरा मत वाले।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल हूं और आशा करता हूं कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज भी फिर से एक बार परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने के लिए रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों रोमियो की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं। हम देखते हैं कि अन्य जातियों के विशाल मंदिर रोम में थे, परंतु मसीही विश्वासियों के पास अपना आराधनालय भी नहीं था। अतः पौलुस कहता है कि कोई कुछ भी कहे, मैं तो सुसमाचार का प्रचार करूंगा, मैं नहीं ला जाता, क्योंकि यह सब के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर का सामर्थ्य है। धर्मी जन मंदिरों में उपासना करके नहीं, विश्वास से जीवित रहेगा। मेरे मित्रों, अब उनके लिए जो नहीं मानते कि परमेश्वर है, प्रकृति ने विवाद का आधार ही नहीं रख छोड़ा है। प्रकृति उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर का वर्णन करती है, इस कारण वे निरुत्तर हैं। मित्रों, हम देखते हैं मनुष्य की प्राकृतिक स्थानापन प्रतिक्रिया। अगले कुछ पदों में आप देखेंगे कि मनुष्य ने अदन की वाटिका के बाद पतन के 7 चरण लिए हैं। हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 21 से 23 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। मेरे मित्रों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मनुष्य ऊपर उठ रहा हो। ये पद विवादास्पद के विचार का खंडन करते हैं। मनुष्य शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक या आत्मिक विकास नहीं कर रहा है, उसका खिंचाव नीचे की ओर है। निसंदेह यह धर्म के सूक्ति ग्रंथ की, मनुष्य आरंभ में गुफावासी था और उसमें बुद्धि बहुत कम थी और शनय शनय अर्थात धीरे धीरे वह विकसित हुआ और परमेश्वर की ओर बढ़ना आरंभ किया आदि विचारों का खंडन करता है। यह एक निश्चित मूल है और सच तो यह है कि मनुष्य परमेश्वर से दूर होता जा रहा है और आज मनुष्य इतिहास के किसी भी समय की तुलना में परमेश्वर से बहुत दूर हो गया है। सच तो यह है कि प्रत्येक जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि आरंभ में उनके पूर्वज परमेश्वर को जानते थे। डॉक्टर विंसेंट ने अपनी पुस्तक वर्ल्ड स्टडीज इन द न्यू टेस्टमेंट में कहा, मेरे विचार में किसी भी मानव समुदाय, निम्नतम स्तर के बर्बर भी, अपने जीवन के किसी भी काल में अपने वर्तमान ज्ञान से अधिक जानकारी रखते थे। यदि वे वह काम करते जो मनुष्य ने नहीं किया तो उनका ज्ञान पर्याप्त था कि उन्हें सुविधाजनक निर्वाह करने, पल्लवित होने और विकासमान होने में सक्षम बनाता। वे जो कुछ भी जानते थे उन्हें करना था और वे कर सकते थे। कोई भी मनुष्य ने अपने उस ज्योति में निर्वाह नहीं किया जो उन्हें प्राप्त थी। यद्यपि उनमें परमेश्वर का ज्ञान था, वे परमेश्वर से दूर हो गए। मेरे मित्रों, परमेश्वर के योग्य बढ़ाई और धन्यवाद न किया, उन्होंने उसे योग्य स्थान प्रदान नहीं किया। मनुष्य आत्मनिर्भर हो गया और आज के युग में मनुष्य ने घोषणा कर दी है कि परमेश्वर मर गया है। आरंभ में मनुष्य परमेश्वर को निर्जीव नहीं कहता था, वे उससे विमुख होकर मनुष्य को परमेश्वर बना देते थे। ध्यान दीजिए, धन्यवाद न किया। कृतज्ञता सबसे बड़ा पाप है। आपको स्मरण होगा कि प्रभु यीशु ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी थी, उनमें से एक ही उसे आभार व्यक्त करने आया था। केवल 10% ही आभारी थे और मेरे विचार में आज उससे भी कम है, व्यर्थ विचार करने लगे। उन्होंने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया, वे अन्य जातियों के अंधकार में प्रवेश कर गए। आप सड़कों पर निकल जाइए और आपको समझ में आ जाएगा कि मनुष्य का निर्बुद्धि मन अंधकार से भरा हुआ है। मेरे मित्रों, अपने आप को बुद्धिमान जताकर उन्होंने अपने आप को ही मूर्ख बना लिया, अर्थात मूर्ख बन गए। मनुष्य की बुद्धि परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। मनुष्य तर्क के आधार पर सत्य की खोज करता है और ऐसा दार्शनिक विचार प्रतिपादित करता है जो परमेश्वर के समक्ष मूर्खता है। और आगे हम देखते हैं, अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूरत की समानता में बदल डाला। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उद्धार से रहित संसार परमेश्वर के व्यंग चित्र बनाता है? अन्य जातियों की मूर्तों को देखें। मुझे यह बोध तब हुआ जब इफिसुस नगर के शहरों को हम देखते हैं। रोमी साम्राज्य का वह नगर आज नगरों की तुलना में सभ्यता और संस्कृति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, तथापि उस नगर के केंद्र में कल्पना से परे अत्यधिक भयावह मूर्तियां थी। वे अर्तेमस अर्थात डायना के मंदिर में स्थापित थी। यह मंदिर प्राचीन संसार के 7 आश्चर्यों में से एक था। वह वैसी सुंदर नहीं थी जैसी यूनानी मूर्तिकला उसे प्रकट करती है। यह सभ्य एवं शिष्ट समाज का परमेश्वर संबंधित विचार है। उसके मंदिर में घोर अनैतिकता और जघन्य अनिष्ठा का प्रचलन था। वहीं वहां के मुख्य देवी थी। उन्होंने अविनाशी परमेश्वर की महिमा को मनुष्य की नाशवान आकृति में बदल दिया। मेरे प्रियो, मूर्ति पूजा वास्तव में परमेश्वर पर व्यंग है। यह परमेश्वर की निंदा और कलंक है। मुझे तो यीशु के चित्र भी देखना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि दूसरे कुरिन्थियों की पत्री 5 अध्याय उसके 16 पद में पौलुस स्पष्ट रूप से कहता है कि हम उसे अब देह में नहीं जानते हैं, वह महिमान्वित मसीह है। हमारे परमेश्वर के चित्र बनाकर उसकी निंदा ना करें। मेरे प्रियो, वह दीवार पर लटका हुआ चित्र नहीं है। यदि वह आपके कमरे में प्रकट हो तो आप मुंह के बल गिरकर उसे दंडवत करेंगे। वह महिमा का मसीह है, उसे कलंकित न करें। अर्थात कलंकित करके उसका चित्र न बनाए। यूनानी मानव स्वरूप में अपने देवता बनाते थे। अशुर, मिस्री और बाबुलवासी अपने ईश्वर को पशुओं, चिड़ियों और रेंगने वाले जंतुओं का रूप देते थे। मैंने कुछ संग्रहालयों का भ्रमण किया और उनके देवताओं की मूर्तियों को देखा। वे मनमोहक मूर्तियां नहीं थी। मेरा विश्वास करें, मनुष्य का आरंभ मूर्ति पूजा से नहीं हुआ था। आज के बर्बर आदि मानव से सर्वथा भिन्न है। आदि मानव एक परमेश्वर को पूजता था। मूर्ति पूजा तो बहुत बाद में आई है। परमेश्वर के वचन में मूर्ति का उल्लेख उत्पत्ति अध्याय 31 में है, जब राहेल ने अपने पिता की मूर्ति चुरा ली थी। मनुष्य पतन के मार्ग पर था, उन्नति के नहीं। मेरे मित्रों, धार्मिक रूप से मनुष्य परमेश्वर से दूर हो गया है। सर विलियम रामसे कभी अत्यधिक विरोधी अविश्वासी थे। उन्होंने लिखा, मैं अपनी ओर से स्वीकार करता हूं कि मेरा अनुभव और अध्ययन आधुनिक धर्म के इतिहास में आधुनिक विचार को सिद्ध करने के लिए कुछ भी योगदान नहीं दे सकते, वरन पौलुस के समर्थन में बहुत कुछ कह सकते हैं। जो भी प्रमाण है, दुर्लभ आपत्तियों की अपेक्षा मनुष्य के धर्म का इतिहास पतन का इतिहास है। क्या यह मानव इतिहास का तथ्य नहीं? मनुष्य अकेला ही पतित होता है और उन्नति तभी कर सकता है या कर पाता है जब उसमें दिव्य जीवन के प्रति श्रद्धा हो कि सामाजिक समुदाय को परिशुद्ध मधुर और स्वास्थ्य रखा जाए। मेरे मित्रों, आज हमारे गरीबी उन्मूलन, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक कार्यक्रमों में असफलता मिल रही है, क्योंकि वहां घोर अनैतिकता है और परमेश्वर से दूर होना है। वे कहते हैं, हम व्यवहारिक होना चाहते हैं, हम धर्म का हस्तक्षेप नहीं चाहते। यही तो समस्या है। मनुष्य के लिए एकमात्र व्यवहारिक बात है जीवित एवं सच्चे मनुष्य की ओर फिरें। मेरे मित्रों, आइए अब हम देखें मनुष्य का अप्राकृतिक पतन। अब हम मनुष्य द्वारा परमेश्वर विद्रोह के परिणाम को देखेंगे। इस अध्याय के शेष भाग में पौलुस 3 बार कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें त्याग दिया है। तो आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 24 पद में लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, मनुष्य का पतन उसकी यौन विकृति द्वारा समझा जाता है। आज अनेक कलीसियाएं यौनाचार का त्याग करने की अपेक्षा उसे स्वीकार कर रही हैं। परमेश्वर कहता है कि उसने उन्हें त्याग दिया है। मूर्ति पूजा और घोर अनैतिकता परमेश्वर के प्रकाशन के त्याग का कड़वा फल है। छोड़ दिया, यथार्थ में परमेश्वर ने उन्हें सौंप दिया। यह सकारात्मक व्यवहार है, अक्रिय नहीं। मेरे मित्रों, हम पढ़ते हैं रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसके 25 पद में, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, न कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि वे परमेश्वर को त्याग कर शैतान के हो गए, जो झूठ का पिता और मूर्ति पूजा का संस्थापक है। यह मूर्ति पूजा ही है जिसके कारण वे नैतिक पतन की गहराइयों में गिर गए। हम रोमियो के पत्र 1 अध्याय उसके 26 और 27 पद में पढ़ते हैं, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों ने भी स्वाभाविक व्यवहार को उसमें से जो स्वभाव के विरुद्ध है बदल डाला। वैसे ही पुरुष भी स्त्रियों के साथ स्वाभाविक व्यवहार छोड़कर आपस में कामातुर होकर जलने लगे और पुरुषों ने पुरुषों के साथ निर्लज काम करके अपने भ्रम का ठीक फल पाया। मेरे मित्रों, ध्यान दीजिए, ये अनादर, अपमान और भ्रष्टाचार की लालसाएं हैं। चाहे आज जनता के विचार कुछ भी हो, यूनानियों के जीवन में भ्रष्टाचार प्रवेश कर गया था और परिणाम स्वरूप में मिट्टी में मिल गए। आज यूनान को देखें, उनकी महिमा समाप्त हो गई है। क्यों? इन पापों के कारण। हम रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 28 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। ध्यान दें, यदि मुझसे कोई कहे कि वह परमेश्वर की संतान है और अनैतिकता के वास में रहे, अर्थात अनैतिकता में वास करे तो आधुनिक दुराचार के दलदल में तो वह स्वयं को धोखा देता ही है। यदि वह मसीह को अपना ले तो उसका उद्धार संभव है। अग्रिम तीन पद पाप की संतान का भयावह रूप प्रकट करते हैं, जिसमें परमेश्वर से विद्रोह उत्पन्न होता है। आइए हम पढ़ें रोमियो की पत्री 1:29-31 पद में लिखा हुआ है, सो वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और वैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर के देखने में घृणित, औरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार, बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा न मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। मेरे मित्रों, मैं अपने विद्यार्थियों से कहता था कि वे दैनिक समाचार पत्र खरीदकर उसमें वर्णित प्रत्येक पाप का शीर्षक खोजें। यह प्रत्येक देश की समस्या है। परमेश्वर कब तक सहन करेगा? उसने पूर्व काल में इस मार्ग पर चलने वाले महान राष्ट्रों को दंड दिया है। हम रोमियो की पत्री 1:32 पद में पढ़ते हैं, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी न केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। मेरे प्रिय मित्रों, मनुष्य को परमेश्वर से प्रकाशन प्राप्त है, परंतु वह इन पापों का प्रदर्शन करके परमेश्वर के दंड को चुनौती देता है। वह इनको व्यवहार में लाता है और इनके करने वालों को सराहता है तथा उनका अनुमोदन करता है। मेरे मित्रों, हम इस अध्ययन में देख रहे हैं कि पौलुस कह रहा है कि परमेश्वर ढोंगी और धर्मी जनों का न्याय करेगा। आज अनेक विश्वासी उस सेवकाई की नाई हैं जो पहाड़ के ऊपर से तलहटी में खड़े मनुष्य को देखकर कहता है, उस बेचारे के लिए कुछ करना चाहिए, हमें एक सेवा कार्य आरंभ करना है, हमें उसे भोजन कपड़ा देना है और उसे स्नान करवाना है। मैं तो पहाड़ की चोटी पर रह रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा पूर्ति में आने वाली बाधाएं पर्वत की चोटी और तलहटी दोनों स्थानों में बहुत अधिक है। अंतर केवल यह है कि तलहटी में उपस्थित मनुष्य अपनी आवश्यकता को पर्वत चोटी पर उपस्थित मनुष्य से अधिक शीघ्र देख लेगा। धर्मी जन, ढोंगी मनुष्य और भले कहलाने वाले मनुष्य आदि सबको एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, अध्याय 2 में पौलुस कुछ नियम बताता है जिनके द्वारा परमेश्वर अच्छे मनुष्य का न्याय करेगा। अध्याय 1 में मनुष्य की आधार्मिकता का वर्णन है और अध्याय 2 में मनुष्य के आडंबर का वर्णन है। अतः इस अध्याय का विषय है, परमेश्वर ढोंगियों और धर्मी जनों का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, यहां पर अध्याय 1 समाप्त होता है और अब हम अध्याय 2 में प्रवेश करते हैं। रोमियो के पत्री 2 उसके 1 पद में लिखा है, सो हे दोष लगाने वाले, तू कोई क्यों ना हो तो निरुत्तर है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है, इसलिए कि तू जो दोष लगाता है आप ही वही काम करता है। यह पद हमारे समक्ष इस अध्याय का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय प्रस्तुत करता है। यहां यह ध्यान रखना उचित होगा कि पौलुस उद्धार की चर्चा नहीं कर रहा है, वह पाप और परमेश्वर द्वारा मनुष्य के न्याय की चर्चा करता है। न्याय के ये सिद्धांत उद्धार का आधार नहीं है, वे न्याय का आधार हैं। मैं आपके विचार को तो नहीं जानता, परंतु निश्चय ही मैं नहीं चाहता कि उनके आधार पर मेरा न्याय किया जाए। मैं उद्धारकर्ता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और धर्मशास्त्र, जो अनंत जीवन पाने के लिए एकमात्र साधन और सुसमाचार प्रस्तुत करता है, उसका भी धन्यवाद करता हूं। परमेश्वर के पुत्र को अस्वीकार करने पर मनुष्य तुरंत परमेश्वर से दंड पाता है। मेरे प्रियो, यहां जो निर्णय है वह है दोषी कौन है। पहला योना की पत्री 5:12 पद में लिखा है कि जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास जीवन नहीं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 में प्रभु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह तो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हम प्रायः यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:16 पर ही रुक जाते हैं, परंतु इस अद्भुत पद से आगे भी तो प्रभु की वाणी सुनिए। पद 17-18 में परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए जो उस पर विश्वास करता है। उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता है वह दोषी ठहर चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और तब यूहन्ना रचित सुसमाचार 3:36 में लिखा है, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। अतः आज जिनके मन में मसीह का वास नहीं वे पथ भ्रष्ट हो चुके हैं। आप एक धर्मी जन हो सकते हैं, आप एक भले मनुष्य हो सकते हैं, परंतु मेरे मित्रों मसीह के बिना आप भटक चुके हैं। वचन में हमें बताया गया है कि तू निरुत्तर है, कौन सब मनुष्य जाति स्त्री पुरुष यहूदी और अन्य जाति सब निरुत्तर हैं। वचन में लिखा हुआ है, हे दोष लगाने वाले तू कोई क्यों ना हो। मेरे प्रियो, अब वह सामान्य से व्यक्ति विशेष पर आता है, जन समूह से व्यक्ति विशेष पर। मानव जाति का कोई भी मनुष्य, परंतु वह विशेष करके दोष लगाने वाले की बात कह रहा है। दोष लगाना एक नकारात्मक निर्णय है। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि तू जो भी है दूसरों पर दोष लगाएगा, तो आप सोच सकते हैं कि आगे क्या है। अब एक प्रश्न उठता है, आज एक विश्वासी का रोमियो की पत्री में व्यक्त दुर्विचार और दुष्ट मनुष्यों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि हम उनके उद्धार की कामना करें, हम उन तक सुसमाचार पहुंचाने का प्रयास करें। वे अभागे भटके हुए हैं। फेनी क्रोस्पे ने एक गीत में व्यक्त किया है, नाश होने वालों को बचा, मरणहारों की सुधि ले, पाप और कब्र से उन्हें दया में भरकर उबार ले, चूकने वालों के लिए रो, पतितों को उबार ले, उन्हें यीशु के बारे में सुना ले। मेरे मित्रों, हमारा स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए। उन पर हमें प्रकट करना है कि उन्हें उद्धार पाने की आवश्यकता है और भ्रष्टाचार एवं अनैतिकता से उबारा जाना है, क्योंकि जिस बात में तू दूसरे पर दोष लगाता है उसी बात में अपने आप को भी दोषी ठहराता है। यहाँ भ्रम उत्पन्न हो सकता है कि उसी बात का अर्थ यह नहीं है कि ठीक वही काम, परंतु यह कि परमेश्वर की दृष्टि में उसके तुल्य बुराई और भयानक काम, अन्य जातियों के भ्रष्ट कार्य जो सभ्य पापियों के लिए घृणित थे। मेरे मित्रों, मैं इसका उदाहरण देता हूं। एक मनुष्य है जिसका उद्धार नहीं हुआ है। वह विश्वास नहीं करता कि हिटलर के लिए नरक बहुत गर्म किया जा सकता है। मेरे प्रियो, वह न्याय करता है। उसने परमेश्वर का स्थान ले लिया है और आप और मैं उनका न्याय कर रहे हैं जो हमारे स्तर से नीचे गिर गए हैं। हम आज के सामाजिक मानदंडों को काम में लेते हैं जो भिन्न भिन्न है। यदि कोई आपके समूह के योग्य नहीं ठहरता है तो आप उसे दोषी ठहराते हैं। मैं कुछ ऐसी कलीसियाओं को जानता हूं जहां आपका झूठ अनदेखा किया जाता है। व्यर्थ की बातें करने वालों का साथ और बेईमानों का साथ सब चल जाता है, परंतु धूम्रपान वहां स्वीकार्य नहीं है। धूम्रपान करने वालों को दोषी ठहराया जाता है। मेरे मित्रों, किसी का न्याय करने पर आप न्यायाधीश का स्थान ले लेते हैं। परमेश्वर कहता है कि आप अपने मानदंड से अन्यों का न्याय करते हैं, तो परमेश्वर अपने मानदंड से आपका न्याय करने का अधिकार रखता है। यदि हम अपने आप को परमेश्वर की दृष्टि से देखें तो पाएंगे कि हम अत्यधिक दूषित हैं, अत्यधिक घृणित हैं। आप और मैं स्वर्ग के लिए कैसा योगदान दे सकते हैं? क्या हम उसे सौंदर्य प्रदान करेंगे? मुझे कुछ मनुष्यों से स्वर्ग की ऐसी छवि सुनने को मिली है कि जब हम वहां पहुंचेंगे तो वह एक अति उत्तम स्थान होगा, परंतु जब वे पृथ्वी पर थे तब पृथ्वी उनके कारण एक उत्तम स्थान क्यों नहीं बनी। मेरे मित्रों, आप परमेश्वर का इनकार करते हैं, आपके पास अन्यों का न्याय करने का अवसर है, तो परमेश्वर के पास भी आपका न्याय करने का अवसर है, परंतु वह आपके मानदंड से नहीं अपने मानदंड से आपका न्याय करेगा। क्या इससे आप पर प्रभाव पड़ना तो चाहिए, क्योंकि मैंने यह पाया है कि हम परमेश्वर के मानदंड में नहीं उतर पाते हैं। अब पौलुस परमेश्वर के न्याय के सिद्धांत को बताता है, जिसके द्वारा वह सभ्य एवं शिष्ट पापियों का न्याय करेगा। मेरे मित्रों, यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मुझे विश्वास है कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन के बारे में अवश्य ही नजदीकी से जान लिया है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो दूसरों पर दोष लगाते हैं और अपने आप को नहीं देखते? क्या आप भी दूसरों का न्याय करने में लगे हुए हैं, दूसरों को मानदंड से नाप रहे हैं? ध्यान रखें कि आपका भी न्याय किया जाएगा। मेरे प्रियो, आइए हम सब परमेश्वर के निकटता में आए, अपने पापों को मान लें कि हाँ, हमने पाप किया है, हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है, और वह निश्चय ही प्रभु यीशु है, जिसने मेरे और आपके पापों को अपने ऊपर ले लिया, और वह मेरे और आपके बदले में क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि उसके मृत्यु के द्वारा हम उद्धार को प्राप्त करें। मुझे और आपको किसी भी प्रकार के कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ अपने पापों से पश्चाताप करना है, प्रभु यीशु मसीह के पास में उसे मान लेना है और उसे अपने जीवन में जगह देना है। मुझे विश्वास है कि आप आज अवश्य ही अपने जीवन के लिए एक उत्तम निर्णय लेंगे। प्रभु आप सबकी सहायता करे और आज के अध्ययन के द्वारा बहुतायत से आप सबको आशीष प्रदान करें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, तेरी कोशिशों के बदले क्या बता तुझे मिला है, जिंदगी खुशी से भर दे कोई ऐसा सिलसिला है, तुझे कुछ न दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, तुझे कुछ ना दे सकेगा तेरे भाग्य का सितारा, सिर्फ एक नजर उठा के देख ले लहू की धारा, तेरे पास घुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा, तेरे पास धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा।